ज्ञान किसके द्वारा देते
हैं?
ज्ञान भी प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देते हैं और याद की ताकत भी किसके द्वारा देते हैं? तुम बच्चों को पलकों पर बिठा कर ले जाऊंगा तो किसके द्वारा? ऐसे परिवार में बच्चों का कनेक्शन बाप के साथ होता है, ऐसे ये बेहद का परिवार है। बच्चे नंबर बार सर से बोले हैं, सबसे उन बच्चों को बाप याद करते हैं, याद की पावर देते हैं। इसलिए बोला ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की रचना करते हैं, ब्राह्मणों की रचना ब्रह्मा द्वारा होती है और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। लेकिन देता कौन है? शिव बाबा देता है, न ब्रह्मा देता है न प्रजापिता देता है। जब अपने पार्ट की प्रत्यक्षता होगी तो अंदर से खुशी आवेगी, पता भी लगेगा। मुसाफिरी करके घर वापस लौटते हैं और घर के नजदीक के पेड़ रूख दिखाई पड़ते हैं तो खुशी आती है ना। तो हमारा शांति धाम और सुख धाम नजदीक आता जाएगा। जो बाप के बच्चे होंगे आत्मिक स्थिति वाले उनको खुशी होगी। जिन्होंने वो परिक्रिया वो ज्ञान नहीं सुना है नहीं समझा है उनका दुख बढ़ता जाएगा। तो अंदर से उमंग उल्लास पैदा होता जाएगा। मनन चिंतन मंथन बढ़ेगा और मंथन के आधार पर अपने पार्ट की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जितना जितना अनेक जन्मों का पार्ट क्लियर होता जाएगा, जैसे कि हमारा सुदर्शन चक्र घूमता जाएगा और जो आत्मिक स्थिति का आत्माओं का बाप के बच्चों का विरोध करने वाले देह अभिमानी है उनको भी पता लगता जाएगा कि हम तो अहंकारी असुर हैं, असली पुरुषार्थ तो इनका है, असली प्राप्ति इन्होंने की है हमने नहीं की। सुदर्शन चक्र कोई एक प्रश्न की बात नहीं है, नंबर बार बच्चे सुदर्शन चक्रधारी है। चक्र घूमता जावेगा और असुरों के गले कटते जावेंगे, अहंकार चूर चूर होता जावेगा, देह रूपी देह अभिमान धराशायी होता जाएगा।
भक्तिमार्ग में गणेश को सिद्धिदाता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में सिद्धिदाता सिद्धेश्वर शिव बाबा या गणेश?
दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अगर देह अभिमान के रूप में गणेश की सूंड दिखाई जाती है ज्ञान सुनने और सुनाने की निशानी बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं बुद्धिमत्ता की निशानी चौड़ा माथा दिखाया जाता है तो ये सब नंबरवार है। गण कहा जाता है समूह को। गणेश कहा जाता है समूह का ईश्वर। जैसे क्लास होता है तो क्लास में एक मॉनिटर होता है। टीचर की गैर हाजिरी में मॉनिटर कंट्रोल करता है। ऐसे ही आत्माओं के बीच में जो देव आत्माएं हैं उनमें कोई बच्चा है जो समूह का मुखिया है, कंट्रोलर है, वो देवताओं का ईश्वर है, देवताओं का स्वामी है, विधर्मियों का स्वामी नहीं है। मुख्य विधर्मी है छह, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख। इन छों का मुखिया षणमुख दिखाया जाता है, छह मुख वाला। इसका नाम रखा गया कार्तिकेय। तो ज्ञानी कौन हुआ और अज्ञानी कौन हुआ? जो अनेक मुखों से बात करता है वो हुआ अज्ञानी। कभी एक बात करता, कभी दूसरी बात करता, कभी तीसरी बात करता। और जो सदैव एक की ही सुनता है, एक की बात बोलता है, एक को ही याद करता है। जैसे गणेश के लिए कहानी आती है, सारी दुनिया किसमें समाई हुई है? क्या देखा? मात पिता में सारी दुनिया समाई हुई है। बुद्धि की एकाग्रता की बात है। किसी ने ये एकाग्रता रूपी योग ज्यादा सीख लिया तो देवताओं का ईश ये टाइटल मिल गया। बाकी भगवान तो देवताओं का भी ईश्वर है और असुरों का भी ईश्वर है। भगवान के लिए ये बंटवारा नहीं है, जैसे भगवान के बच्चों के लिए बंटवारा है। भगवान के दो मुख्य बच्चे दिखाए गए भक्ति मार्ग में, गणेश और कार्तिकेय। उनको बंटवारा कर दिया पुरुषार्थ के अनुसार। भगवान तो सबका मालिक है, इसलिए कहते हैं नई दुनिया मेरी है तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? और
श्री ज्योति बिंदु सफेद लाइट स्थूल आंखों में देखा जा सकता है?
खुली आंखों में साक्षात्कार की बात है। साक्षात्कार बंद आंखों से भी होता है और खुली आंखों से भी होता है, लेकिन साक्षात्कार जो है वो पवित्र आत्माओं को होता है। पवित्रता बुद्धि में समाई हुई है, कर्म इंद्रियों में समाई हुई है, तो साक्षात्कार नहीं होता है। और सूर्योदय कितना बजे से माना जाता है? है?
12 बजे के बाद भी सूर्य,
रात्रि के 12 बजे तक भोर अंधेरा, और उसके बाद सोजरा होना शुरू होता है। ये किनकी मान्यता के आधार पर है? विदेशियों ने ये बात निकाली कि सूर्य का उदय रात्रि के 12 बजे से ही होना शुरू हो जाता है। रात्रि के 12 बजे तक सूर्य अंधकार में जाता है, अंधेरे में जाता है, और उसके बाद 12 बजे से उभरना शुरू होता है। अब है तो विदेशियों के लिए भी अंधकार की बात और देशियों के लिए भी अंधकार की बात। सूर्य अंधकार में जाता है या दुनिया अंधकार में जाती है? दुनिया अंधकार में जाती है। एक ही टाइम पर एक देश में अमृत वेला और दूसरे देश में नुमा शाम का समय हो जाता है, अंधेरी रात हो जाती है। इसलिए बोला है विशेष आत्माएं कुछ ऐसी भी हैं कि कोई भी टाइम पर वो अमृत वेला बना सकती है, वो काल में बंधी हुई नहीं है। जो काल के गाल में बंध जाते हैं वो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं आते, तभी भी उनका फाउंडेशन वेला है, क्योंकि सदैव सूर्य से कनेक्टेड है। बाकी सामान्य स्थिति में सामान्य पुरुषार्थियों के लिए 12-1 बजे के बाद अमृत मिला है, और वो सारे दिन का फाउंडेशन काल है। अनुभव कर सकते हैं विशेष पुरुषार्थ करके किसी दिन कि अमृत वेला अगर हम अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे तो सारा दिन आत्मिक स्थिति में मेहनत करने की अनुभूति नहीं होगी, ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। हल्कापन बना रहेगा। बजे से 1 बजे से लेकर और सूर्योदय तक 5-5:45 बजे तक का टाइम सामान्य रूप से अमृत वेला है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी खंड हो।
क्लास 328 में बोला गया है कि 7 दिन में जो क्लास करेगा वो क्रिश्चियन और मुस्लिम कहलाया जाता है, इसका हमको थोड़ा क्लियर से थोड़ा समझा दीजिए।
भक्ति मार्ग में मुसलमान या क्रिश्चियंस, मोस्टली कितने दिनों के बाद अपने पूजा गृह में जाते हैं? है? 7 दिन के बाद जाते हैं। और यहाँ तो हमारा पूजा गृह रोज खुला हुआ है। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होता है ज्ञान। ज्ञान है पढ़ाई, पूजा को पढ़ाई नहीं कहा जाता। तो पूजा के हिसाब से जो करने वाले हैं वो भले 7 दिन में एक बार जावे, लेकिन जो पढ़ाई पढ़ने वाले रेगुलर स्टूडेंट हैं, पंक्चुअल स्टूडेंट हैं, उनको तो रोज ही पढ़ाई पढ़नी है, क्योंकि ये सुप्रीम टीचर की पढ़ाई है। इसमें तो बिल्कुल गफलत नहीं करना है। और जो देशी है, पक्के भारतवासी है, वो भारत में आए हुए भगवान के महत्व को जानेंगे, या जो विदेशी धर्म खंड के हैं वो भगवान के महत्व को जानेंगे? भारतवासी जानेंगे, महत्व को जानेंगे तो पढ़ाई के महत्व को भी जानेंगे। भगवान कोई नहीं पहचानेंगे, ये ऊंचे पे ऊंचा टीचर है, तो पढ़ाई को भी वैल्यू क्यों देंगे? और
ज्ञान के समय बाबा कैसे माया बेटी को भेजते हैं?
वो तो पहले से ही तैनाती कर रखी है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं, कारण या कारण कोई न कोई तरीके से श्रीमत की अवहेलना करते हैं, माया बेटी तुम उन बच्चों को खूब फटकाओ, खूब बिगड़ डालो। तो माया कोई न कोई वस्तु के रूप में, कोई न कोई व्यक्ति के रूप में, स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में, वो रूप धारण करके आती रहती है और पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाती।
बाबा मैं बोलता हूँ कि सख्त का कोई चीज होता
है?
सख्त का मैंने कोई पाप करो या पुण्य करो, सख्त कार तो बाप बोला है कार को जो सजा दिया जा सकता है, ऐसे तो नहीं दूंगा, पहले सजा देखा के तब दूंगा। ये सजा जब तक कब तक काट सकता है? जब तक जितना माने उसको पुरुषार्थ हो उतना तक देख कर उसके बाद की आगे तक जा सकता है
क्या?
मैं पूछ रहा हूँ,
जैसे आप अपनी बंगाली में बोल दीजिए, नहीं बोल पा रहे हैं।
बंगाली नहीं है, इतनी बोल रहे हैं।
बोलता है जैसे बाबा, जैसे धर्मराज का पिटाई होता ना,
है
धर्मराज का पिटाई, तो धर्मराज का जो पिटाई साक्षात के बाद ही होगा ना, जैसे जो जो कर्म किया उसको जो रील रिपीट होगा, या
भगवान जो दंड देगा, धर्मराज जो दंड देगा वो पहले साक्षात्कार कराएगा। कोर्ट में भी कोई को सीधे सीधे सजा नहीं दी जाती है, पहले साबित कराया जाता है, अंजाम कराया जाता है कि ये गलती हुई, तो ये भी बेहद का कोर्ट है। साक्षात्कार कराते जाएंगे और सजाएं देते जाएंगे।
उसको आगे इन बाद में बताया जाएगा,
है
उसको आगे क्या उसको सजा मिलेगा उसको बाद में बताया जाएगा। जितना
जैसी जैसी सजा वैसा वैसा उसने कर्म किया होगा। अगर कर्म जघन्य है पाप कर्म जघन्य है तो उसकी सजा भी जघन्य होगी।
अच्छा सजा का जो अनुभव है वो तो खुद खुद करेंगे या सारा दुनिया के बीच में जैसे कुंगू हो जाए या पैरालिसिस हो जाए
सबको पता चलेगा ये सजा ज्यादा खाने वाला है ज्यादा दास दासी बनने वाला है, ये सजाएं कम खाने वाला है ऊंच पद पाने वाला है। कोर्ट लगती है तो कोई गुप्त में कोर्ट लगती है क्या कि पब्लिक के बीच में?
ये सजा तो ऑर्डर बेहद की होता है, हम तो बेहद का सजा ही होगा।
हाँ
बेहद का सजा होगा ही।
हाँ जी बेहद की सजा होगी लेकिन शरीर धारण करा के सजा होगी।
जैसे देखिए कोई काम किया वो छुपा हुआ है अगर उसका सजा ऐसा ही मिलेगा पांव टूट जाए या हाथ टूट जाए या और कुछ होगा इसी तरफ से होगा ना क्या डाकू से होगा?
पद यहाँ डिक्लेयर होने हैं और सजा द्वापर में मिलेगी।
बाबा अभी जो जैन में चलने वाली सूरी छोड़ देते हैं तो उनकी सजा कैसे?
माया भैलोरा डाल देती है, अनिश्चय पैदा करा देती है, कोई गुरु के रूप में कोई व्यक्ति के रूप में वो अनिश्चय पैदा हो जाता है। अनिश्चय बुद्धि बिना क्षेत्र माने मर जाता है। एक जगह मरेगा तो दूसरी जगह जन्म लेगा। एक जगह से अनिश्चय बुद्धि हुआ मर गया तो दूसरी जगह जाकर जन्म लेता है। माना कोई ने अपनी तरफ खींच लिया निश्चय बुद्धि बना दिया जाकर के दूसरा जन्म लिया।
बाबा अभी जैसे ज्ञान में चलते चलते बहुत कुछ ऐसा बहुत बीमारी हो जाता है या बहुत शरीर खराब होता है वो क्या पहले जन्म का सजा का भोग है इसी जन्म का?
इस जन्म में जो पाप करते हैं उसका 100 गुना बोझा चढ़ता है, पिछले जन्म में जो पाप किए थे उसका 1 गुना बोझा चढ़ता था। पिछले जन्म के किए हुए पापों का अक्ष यहाँ आता है, रिहर्सल यहाँ होती है, शूटिंग या रिकॉर्डिंग यहाँ होती है। यहाँ अगर हम अलर्ट हो जाएं, तो बहुत कुछ बारा न्यारा हो सकता है।
तो इस जन्म में जैसे पैरालिसिस हो जाता और कुछ हो जाता है उसका इस जन्म में होता है?
कोई भी कर्म किया जाता है चाहे इस जन्म में किया गया है या उस जन्म में किया गया है पिछले जन्मों में किया गया है, कोई भी किया हुआ कर्म जितने तीव्र संकल्प से किया जाता है जितनी तीव्रता से किया जाता है उतना ही जल्दी उसका फल मिलता है और जितना धीमी गति से किया जाता है उतना देरी से उसका फल मिलता है।
2018 से पहले तो मिल सकता है, है? जितना कोई पाप और किसी का है या मेरा भी है तो 2018 से पहले हो सकता है?
2018 से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है,
अकाल से भी हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है।
अगर अभी अभी किसी का ऐसा बात है अभी अभी अगर तीव्र गति से पोषा शुरू कर दिया तो
अगर मगर क्या
अगर मगर होता है इसमें तलाबू जैसे कोई कोई अभी निश्चय पत्र किया है फिर भी कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है
अपने आप थोड़ी हो जाता है करने से होता है।
तो माया तो कराती है ड्रामा भी है होना भी चाहिए और होना भी चाहिए ड्रामा भी है
ड्रामा है
वो बोलता है ड्रामा भी है भी ड्रामा हो जाएगा जैसे देखिए अगर बोलता है राम
करने कराने के लिए ड्रामा को आगे रखना है या पुरुषार्थ को आगे रखना है?
रखना है नहीं रखना पड़ेगा
पड़ेगा मैंने ड्रामा को आगे रखना पड़ेगा
नहीं नहीं हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा
पुरुषार्थ करना ही है
लेकिन
हम इतना जो चुनाव से जो काम किया हमको आइडिया ला दिया,
पता नहीं है ना,
पता नहीं है लेकिन आइडिया हो गया,
पॉजिटिव हो गया,
जैसे हमारा ये निश्चय हो गया हम आत्मा है, जो हम आत्मा है तो एक जन्म हम नहीं ले सकते
है,
एक जन्म हमारा नहीं हो सकता है, यहाँ पहुँचने वाला आत्मा एक जन्म नहीं हो सकता है,
जो आत्माओं के एक जन्म नहीं होते,
यहाँ पहुँचने वाला एक जन्म होगा,
तो यहाँ हर धर्म की हर कैटेगरी के बीज नहीं है क्या? पांच सौ सात सौ करोड़ मनुष्यों में जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, उन सब के बीज कहाँ हैं?
यही
है, यही है,
ये तो सारे बीज यहाँ बैठा हुआ ना।
हाँ जी,
तो ये सब
यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह बैठे हो, बम्बई में बैठे होंगे,
लेकिन यहाँ भी तो उपस्थित होगा ना,
यहाँ भी हो सकते हैं,
यहाँ भी हो सकते
हैं,
भी लागू कर,
बेसिक में अभी जो बड़े बड़े दीदी दादियों चोरी छोड़ देती है तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग एडवांस में चले जाती है, लेकिन वास्तव में वो लोग कहाँ जाती है?
एडवांस कोई ऐसे नहीं है कि ऊपर है, और पिछड़ा हुआ ऐसे नहीं है कि सब नीचे ही है, आगे आगे ऐसे होंगे जो शरीर छोड़ते जाएंगे और पिछड़े हुए वर्ग में गिरते जाएंगे। एडवांस की वो पिछड़े वर्ग की आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करेंगे, एडवांस का मतलब ये है आगे आगे जाने वाले, वो तो उनकी मान्यता है कि शरीर छोड़ गए मन एडवांस चले गए, उसका प्रूफ कुछ भी नहीं है, वास्तव में एडवांस में वो जाने वाले हैं वो इसी शरीर से इसी जन्म में पूरी सिद्धि प्राप्त करेंगे, उनको कहेंगे एडवांस, जिनका शरीर ही छूट गया वो एडवांस कहेंगे, और
हिंदी भाषा जो था उनका थोड़ा हिस्ट्री होती है,
भीलवाड़ा मंदिर बनाया वो
हिंदी भाई,
हाँ
भीलवाड़ा मंदिर बनाया,
हाँ जी, वो
कोई बताइए दिलवाड़ा वो कौन है अभी, जो वो आदमी कौन होगा?
दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाता है? चैतन्य में दिलवाड़ा मंदिर कौन बनाता है? अच्छा, जड़ में दिलवाड़ा मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर विशेष किसने बनाए हैं? अरे भारतवर्ष में बड़े बड़े शहरों में लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं, बिरला व्यापारी है कोई जिसने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए? वो तो हद की बात हो गई, आज गवर्नमेंट में जो अलग अलग पार्टियां हैं उनमें जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम राम मंदिर बनावेंगे, अब राम का मंदिर राम बना बनावेगा, मंदिर माने घर, अपना घर राम बनावेगा, यो कोई दूसरा बनावेगा। आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र खुद ही है, हम खुद ही अपना बनाने वाले हैं, खुद ही अपना बिगाड़ने वाले। राम राज्य लाएगा तो राम ही लाएगा, गांधी जी नहीं लाएगा। ऐसे ही बिरला मंदिर जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बने हुए हैं, वो यादगार हैं। कि लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया होगा असल चैतन्य में, हैं? किसने बनाया होगा? प्रैक्टिकल में बनाने वाला तो नारायण होगा ना, बनवाने वाला शिव बाबा, लेकिन बनाना किसको पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण को ही बनाना पड़ेगा। इससे क्या साबित हुआ कि जो भक्ति मार्ग का तिलवाड़ा मंदिर बनाया है, वो बनाने वाला गुजरात का राजा भीमदेव किसका पार्ट हुआ? इसके लिए हिस्ट्री में आया है कि सोने की मोहरें बिछा करके वो दिलवाड़ा मंदिर की जमीन खरीदी थी।
ब्रह्माकेश्वर बाबा
है?
ब्रह्माकेश्वर
कौन?
ब्रह्माकेश्वर।
ब्रह्मा की सोन सत्युग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएगी या संगमयुग में बनाएगी? प्रैक्टिकल में मंदिर कहाँ बनता है उनका? ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा जो मंदिर बनाएगी, वो मंदिर सत्युग में होगा या संगमयुग में होगा? कहाँ होगा? सत्युग का प्रारब्ध यहाँ बनाया है, लेकिन प्रारब्ध वहाँ पावेंगे, क्योंकि उतनी तीव्र गति से पुरुषार्थ नहीं किया है। जो तीव्र गति के पुरुषार्थी है, वो यही पुरुषार्थ करते हैं और यही पद प्राप्त कर लेते हैं। जितने भी मोहक में हैं, उन सब मोहकमों में सबसे तीखा मोहकमा कौन सा माना जाता है? जिसके हाथ में सबसे जास्ती पावर होती है, हैं? क्या अहमदाबाद कोई महकमा थोड़ा ही है? जैसे रेलवे का महकमा, जैसे इनकम टैक्स का महकमा, जैसे बैंकिंग डिपार्टमेंट, ऐसे मिलिट्री में सबसे जास्ती पावर होती है। बाप की भी ये रूहानी मिलिट्री है, और जितना ही गुप्त होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। ये गुप्त मिलिट्री है, जब टाइम आवेगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी, दुनिया नहीं जानती है ये कौन है। और कितने बड़े बाप के बच्चे हैं, और
वो आपका एडवांस में आके कब से करेगा?
तपस्या जो है वो शैली में रह की जाती है, है। यह शरीर छोड़ने की बात की जाती है, शरीर में रह के तपस्या की जाती है। तपस्या तो वो होनी थी वो हो चुकी थी, उसका फल उनको एक दो जन्म के बाद मिलेगा। अभी तो उसको आत्मा को पार्ट बजाना है, वो सहयोग का पार्ट बजाना, इंस्पिरेशन पार्टी का पार्ट बजाना, जितना जितना ज्ञान में वो आत्मा छोड़ती जाएगी, एडवांस ज्ञान में गहरी होती जाएगी, उतना उतना सुनियों की उम्र बढ़ती जाएगी। अभी फिलहाल में तो संस्कार बने हुए हैं, वो इस्लाम धर्म के बने हुए हैं, यह कर्मियों के बने हुए हैं, यह सुनियों के संस्कार, इस्लाम धर्म के संस्कार है, तो इस्लाम में ही क्या प्रवेश करेगी? संघ के रंग में आते आते जितना जितना ज्ञान गहरी होती जाएगी, जैसे ब्रह्मा की आत्मा संघ के रंग से अंत में ब्रह्मा से क्या बन जाती है? विष्णु बन जाती है। कौन सी आत्मा संघ में मिलता है? सूर्यवंशी आत्मा संघ में मिलता है, बात पूरी समझ में आ जाती
है। काम नहीं कहते हैं, नहीं कहते
गोपियों को, गोपी माना गुप्त पुरुषार्थी, सिर्फ गोपियों की बात कर रहे हैं या गोप गोपियों दोनों की बात कर रहे हैं?
गोपियों है?
गोप को ब्राह्मण कहते हैं। जब नवरात्रे होते हैं तो कन्याओं को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? कन्याओं की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो तो ब्राह्मणों से भी ऊंची हो गई। एक कन्या कितने ब्राह्मणों से उत्तम? 100 ब्राह्मणों से उत्तम कही जाती है। अगर कन्या है तो
इतना पावर है जिससे सब बोल के निकल जा सकता है। हाँ, तो मोबाइल का जो पावर वो क्या पावर है उसको, जिसको वो नीचे अंदर में रखेगा तो निकल जा सकता है, वो आ सकता है, उसका क्या पावर है? मोबाइल का जो क्या पावर है, कुंडली का अंदर बंद कर रखा है लेकिन उसका अंदर में चले जाता है।
आत्मा भी बैटरी है, वो चैतन्य बैटरी है और मोबाइल में भी बैटरी है, वो जड़ बैटरी है। बैटरी निकाल दो मोबाइल बेकार, अब वो बैटरी छोटी से छोटी बना दो बटन मुआफिक, या बड़ी से बड़ी बना दो है? हाँ जी, पावर की बात है। और
आसमान का जो जड़ सूरज है, आसमान में जो जड़ सूरज है, सूर्य
जड़त्व है,
सूरज है, उसे तो दूसरी दूसरी ग्रह निकला
है?
जो ग्रह है नवग्रह है,
हाँ,
तो वो आसमान का जो सूरज है जड़ सूरज उससे तो निकला है, जो भूगोल कहते हैं
विज्ञान में है। तो
विज्ञान में क्या है,
जो सूरज से ग्रह आता है, जो ग्रह है उपग्रह तो आता है जड़ ग्रह। सूर्य भी जड़ है,
सूरज भी जड़ जड़ है,
वो सूर्य भी जड़ है और जो ग्रह नक्षत्र दूसरे हैं वो भी जड़ हैं, और उनका मिसाल दिया जाता है हम आत्माओं के साथ। इस आकाश में 9 लाख सितारे हैं, ऐसे मान्यता है। तो 9 लाख बीज रूप आत्माएं हैं जिनसे शक्ति की शुरुआत होती है। उनमें कुछ हैं सूर्य के साथ और कोई हैं चंद्रमा के साथ। वो आसमान के जड़ सितारे हैं और ये धरती के चैतन्य सितारे हैं। इन सितारों में कोई नक्षत्र है, स्वयं प्रकाशित हैं। और कोई स्वयं प्रकाशित नहीं है। नक्षत्रों या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। जो स्वयं प्रकाशित नहीं है उनको ग्रह कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा है न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, घर को घर नहीं कहा जाता, ग्रहणी ग्रहम उच्यते, इसको घर कहा जाता है, ग्रहणी को घर कहा जाता है, घरवाली को घर कहा जाता है। जैसे नारायण ज्ञान देने वाला है या कोई साकार से लेने वाला है, नारायण स्वयं देने वाला है या कोई साकार से लेने वाला है, देने वाला है कोई साकार से लेने वाला नहीं है, तो वो हो गया सूर्य। और लक्ष्मी क्या हो गई, गृहिणी हो गई, घरवाली हो गई। वो नारायण से लेने वाली है, उसको देने वाली नहीं है, बच्चों को देने वाली। तो नक्षत्र उससे निकलता है ग्रह, वो हो गई रचना, और ग्रहों से निकलते हैं उपग्रह, वो हो गए बच्चे। तो पृथ्वी है माता, सूर्य है पिता और चंद्रमा है बच्चा। ऐसे ही हिसाब किताब बना हुआ है, हर सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। तो वो बीज रूप सितारे हैं या 500-700 करोड़ सितारों की बात है, बीज रूप सितारों की बात है।
मनुष्य पर ज्ञान छोड़ता है, इसी आत्मा इसी शरीर की नरसिंह बनता है।
एक बार निश्चय बुद्धि हो गया, इसे साबित हुआ कि इस जन्म में नारायण नहीं बन सकता, अगले जन्म में बन सकता है।
एक जन्म
सूर्य अंधकार में नहीं आता, तो सूर्य की रहबरी में रहने वाले बच्चे भी अंधकार में नहीं आना चाहिए।
84 जन्म ही मनुष्य जन्म 84 का जन्म होता है, तो उनका सवासमन का मिला के 84 लाख हो जाता है। मैं 84 जन्म में 84 सवासमन का होकर 84 लाख बन जाते हैं, 84 लाख है। जो जोनी भगवान के जो बातें हैं, तो हम सबको तो 84 का जन्म है, लेकिन 84 जन्म में जो 84 सवासमस्कार होते हैं या संकल्प होते हैं, तो इस दुनिया में जैसे देखिए शिव के मंदिर में गांजा दूधरा चढ़ाया जाता है, तो वैसा आत्मा की इधर भी बीज है क्या?
समझा?
ये माइंड पॉइंट रखते बोलते क्या दे मंदिर है ना शिव का मंदिर,
उनको और अच्छा समझाते।
ना जैसे बोलते 84वां जन्म है,
हाँ जी,
तो 84 जन्म में बोला तुम सुधार किया तो सारा दुनिया सुधार जाएगा,
ठीक है।
तो तुम्हारे अंदर 84 जन्म का संस्कार ऐसा ऐसा होता है, जैसे काला सांप होता तो उस खानदान के सारा काला ही होता है, तुम्हारा संस्कार सब कुछ क्रिया मकड़ा भी है। अगर तुम भी सुधार गया तो दुनिया सुधार जाएगा। इस सारा दुनिया में जो अभी शिव का मंदिर में जो गांजा दूधरा चढ़ाते हैं, वैसा समझ का आत्मा की यहाँ बीज है क्या?
एक आत्मा है जिसके लिए संसार में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, माने उस आत्मा में सब प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं। जितने संस्कार उस आत्मा में भरे हुए हैं, उतने संस्कार और कोई आत्मा में नहीं भरे हुए। चौरासी लाख योनियों से जोड़ दिया है मनुष्य जीवन, माने कोई आत्मा ऐसी भी है जो 84 लाख योनियों मुआफिक पार्ट बजाती है। चौरासी लाख योनियों में भ्रमण नहीं करती है, लेकिन वो संस्कार भरे हुए। इसलिए बोला दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। तो दुनिया में 84 लाख योनियां हैं या नहीं है? हैं? वो 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनी है जो उस तेरे एक के ऊपर लागू न होती हो? इसलिए बोला है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। बाबा कहते ये शास्त्रों का वितंगाबाद कहां से शुरू हुआ? वापस ले शुरू करने वालों में सबसे जास्ती धूर्त कौन हुआ है? उसका नाम क्या है? व्यास। कहते हैं व्यास भगवान। दुनिया में ज्ञान का बीज भी उसी के द्वारा शुरू होता है, और दुनिया में अज्ञान का बीज भी उसी के द्वारा शुरू होता है। इसलिए बोला है पुरानी दुनिया नई दुनिया मेरी है, तो पुरानी दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो सब का बाप है। इसलिए बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, चाहे तुम देवता हो तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ, और चाहे तुम बड़े से बड़े राक्षस हो तो भी तुम्हारा बाप आया हुआ।
महादेव महेश्वर महापाप हरण देव सर, महादेव महेश्वर महापाप जो हरण देव कौन
है?
मगर आए ना मना इसका मतलब जो महाबाप और महेश्वर क्या मतलब महा जो पापी और वार्ड मानव सृष्टि का बीच उनको सुधारने वाला सुप्रीम सर परमात्मा महाबाप और महेश्वर इसी वर्ष परम देव और मकर है न मानव तो महेश्वर के बोलते
ये कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः शंकर को महादेव कहते हैं और शिव परमात्मा नमः शिव को सबसे ऊंचा रखा हुआ शंकर को इतना ऊंचे नहीं रखा है जब नाम जोड़ा जाता है तो नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर है वो शिव नहीं है ऊंचे ऊंचे शंकर नहीं है ऊंचे ऊंचे इसको रखेंगे शिव को रखेंगे तो पापों का हरण करने वाला शिव है या शंकर है इसलिए मुरली में बोला है कहते हैं हर हर महादेव वो भी मैं ही हूँ तो किसने कहा शिव ने कहा या शंकर ने कहा शिव ने कहा कि पापों का हरण करने वाला भी मैं हूँ शंकर नहीं है शंकर अगर पापों का हरण करने वाला होता तो याद में बैठा हुआ क्यों दिखाया गया सबसे जास्ती याद कौन करता है शंकर तो सबसे ज्यादा पापी कौन हुआ शंकर ही सबसे ज्यादा पापी हुआ तो ज्यादा याद करनी पड़ती है
है पाप हरण करने के लिए
निमित्त बना दिया लेकिन हरण करने वाला कौन है शिव है
आपने बोला अगले डेढ़ में आपने आए थे मतलब सप्त माने आठ सप्त माने आठ
सप्त
सप्त माने आठ आपने बोला
नहीं सप्त सिर्फ एक ही है सप्त आठ नहीं हो सकते
मतलब सप्त जो नाम क्यों पढ़ते हैं आपने बोला था सप्त माने आठ
नहीं 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 ये पता नहीं तुमने कैसे समझ लिया आठ नारायण तो उत्तरोत्तर कम कलम वाले होते उनमें एक ही सत्यनारायण गाया हुआ है या आठ सत्यनारायण गाए हुए एक ही गाया हुआ
है लास्ट कलम छोड़ के बाकी कलम सब सब आधार पर सुनने वाले वो लास्ट एक जन्म छोड़ के अंतिम एक जन्म छोड़ के
दुनिया के मुकाबले
और उनमें से पहले तो है देवदेव महादेव उनको इतना चुपला देव सबसे मैंने क्या बोला देव
इसलिए बनता है कि द्वापर युग से जो भी युद्ध किए हैं वो श्रीमत के अनुकूल युद्ध हुए हैं या श्रीमत के विपरीत युद्ध हुए हैं बाप कौन सा युद्ध करना सिखाते हैं अहिंसक युद्ध करना सिखाते हैं और राम वाली आत्मा जो युद्ध करती है विधर्मियों से वो हिंसक युद्ध करती है या अहिंसक युद्ध करती है हिंसक युद्ध करती है इसलिए पाप तो बढ़ेंगे या घटेंगे बढ़ेंगे
और तब तो संघ वाली आत्मा पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग
कंप्लीट हो गया
वो तो किया हम लोग का आइडिया हम लोग कैसे फॉलो करेंगे उनको
हम ये कहाँ कहा शंकर को हालो करो
हम करेंगे
अरे करेंगे तो करो। होली में तो ये बोला है शंकर को तुम बच्चों को फॉलो नहीं करना है, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करो।
यहाँ तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शंकर
क्यों कंफ्यूज हो जाते हो?
कि शंकर मिश्रण पाठ है, से शिव कौन से कृष्ण से राम,
तो मिक्स अच्छा लगता है क्या?
तो इसीलिए हम बोला शंकर को, हाँ इसीलिए बोला शंकर को फॉलो नहीं करना। लेकिन हम प्रजापिता को जैसे तालाब में एक बड़ा पत्थर है तो कोई ने बोला तुम उतार के देखो तो उतार जाएंगे,
किसी ने बोला बोलने दो?
नहीं नहीं, लेकिन इसीलिए सुखेश्वर भी पाप है ना, तो हमको शिक्षा दे रही है इसी शरीर को आधार लिया।
तो शिव बाबा को इस किसी में थोड़े ही है,
इसमें ही है ना
शिव बाबा, तो शिव बाबा तो ऊंचे से ऊंचे मत देने वाला है।
तो बोला प्रजापिता को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, बोला क्या
प्रजापिता को फॉलो नहीं करना? अरे प्रजापिता में दो आत्माएं हैं कर्म करने वाली,
लेकिन हम तो एक को पहचानते हैं।
एक को पहचानते हो अच्छी बात है ना, ऊंची से ऊंची को पहचानो।
मैं तो सिर्फ राम वाली आत्मा को पहचानते क्योंकि
ना हो गया बंटाड़ा। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे, ये परंपरा चल पड़ी। जितने भी धर्म पिताएं आए उन धर्म पिताओं ने अपने को फॉलो करना सिखाया, उन धर्म पिताओं ने जो धर्म की धारणाएं सीखी है वहां तक नहीं ले गए।
बाबा मेरा तो यही गलत हो गया,
अपने में नहीं फंसाना है।
बाबा तो मेरा तो यही गलत हो गया, मैं डाब्बा को देखना शुरू
करूँ। बाबा भी कहते हैं कि किसकी गोद में आए हो, शिव बाबा की गोद में आए हो या ब्रह्मा की गोद में आए हो? तुम्हारी बात तो ऐसे ही हो गई।
मजा तो ब्रह्मा गोद में आ गया हम मानव शरीर लेके।
क्या सोचा? सदैव कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए शिव बाबा के ऊपर। ब्रह्मा के अंदर भी माँ का पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव बाबा है। शंकर में भी विष पीने वाला कौन है? शिव बाबा।
शिव बाबा
कहो
तो मिश्रण पाठ हो गया,
शिव बाबा
कहो
तो मिश्रण पाठ हो गया,
पाप तो मिल्क बाबा कहा जाते हैं।
वो ठीक है, शंकर मिक्स पाठ हो गया क्योंकि देहधारी को शंकर कहा गया है, आत्मा का नाम शंकर नहीं है, आत्मा का नाम शिव है जो सदैव ही शिव है, वो कभी बदलता नहीं, वो सदैव काम ऐसे करता है कल्याणकारी, इसलिए सदा शिव है।
शिव बाबा साकार निराकार को मेल को कहा जाते हैं,
ठीक है।
तो ब्रह्मा में जो पाठ बजा वही शिव बाबा है,
हाँ,
जब प्रजापिता में वही शिव बाबा है, राम में जो है,
हाँ,
वो शिव बाप होगा, शिव बाबा होगा क्या?
कौन शिव बाप हो गया?
पाठ बजाने वाला सुखदेव एक ही काम है, सुखदेव सुरकार कृष्ण वाली आत्मा माँ का पाठ बजाया,
हाँ माँ का पाठ बजाया
और ये बाप का पाठ बजा रहा है।
कौन
सुखदेव सब इसमें
होली में बोला है ये ब्रह्मा बूढ़ा तन है, इसलिए बूढ़ा होने के कारण इनको बाबा कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा। ऐसे नहीं कि शिव इनमें प्रवेश है इसलिए शिव बाबा है, शिव ने प्रवेश होकर के माता का पाठ बजाया। इसलिए वो जगत की माता है, इसलिए मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है जगदम्बा। ये ब्रह्मा क्या है? तुम्हारी जगदम्बा है, वास्तव में ये जगदम्बा है, क्योंकि माँ के रूप में सहन करने का पाठ किसने बजाया है? एक ही पाठधारी है जिसने सहन शक्ति का इतना पाठ बजाया, और कोई पाठधारी नहीं है, इसलिए बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है।
परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में इनको नहीं रख सकते। ओमर आदि को निमित्त बनाया है। तो जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए। वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है तो पूजा होनी चाहिए कि नहीं? ये क्यों नहीं पूजा होती? क्योंकि दुर्योधन दुशासन तन पुरुष का है, इसलिए उस तन की पूजा नहीं होती। वही तनधारी आत्मा जब कोई माता में प्रवेश करती है तब उसकी पूजा होती है जगदम्बा के रूप में।